स्वभाव, उनकी मजाक हास्य विनोद करने की वृत्ति, ये सब मानवीय प्रतीत होती है। और वैसे वो हैं भी, लेकिन बिना किसी विशुद्ध वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन के फलस्वरूप तत्ववेत्ता, फिलोसोफर्स या विद्वान वो भगवान की लीला देखते हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष कुछ पूरा उल्टा होता है। जैसे एक हमारे भक्त अभी न्यूयॉर्क से आए हैं और कल उन्होंने प्रवचन दिया, शायद आप में से किसी ने सुना होगा। वे कहते हैं पाश्चात्य लोगों को उनके अपने अपने धार्मिक पंथ अनुसार जो भी भगवान के बारे में बताया है, तो वो ऐसा है कि अगर आप भगवान को संतुष्ट करेंगे तो आप जीवन में सुखी हो सकते हैं, और यदि आपने भगवान को असंतुष्ट कर दिया तो निश्चित आपको वो नरक में डाल देंगे सदा के लिए। ऐसे नहीं कि गलती हो गई माफ करना, अगली बार से नहीं करूंगा, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता। यह मनुष्य जीवन एकमात्र संधि उपलब्ध है, दिस इज द ओनली चांस। इसमें आप भगवान को मानो, हां बोल दो कि ठीक है भले मेरी इच्छा नहीं हो रही है लेकिन बोलना पड़ रहा है, अभी क्या करें, नहीं तो मरने के बाद चिरकाल के लिए नरक। अब ऐसा है, ये नरक का डर जो है ये कई सैकड़ों वर्षों तक काम किया उसने, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता वो। कई लोग डरे, चलो कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, और जैसे कली बढ़ता जा रहा है, कली का प्रभाव, तो लोगों को सबसे पहले ये ऐसे कोई भगवान नाम का व्यक्ति हो सकता है जिसकी बुद्धि इतनी कम है, कोई कोई फिलोसोफर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि कोई मामूली टीचर है वो अगर अपने विद्यार्थियों से कहेंगे कि अगर आप इस वर्ष फेल हो गए तो सीधे स्कूल से बाहर, फिर कोई एजुकेशन का कोई चांस ही नहीं, कुछ पूछो ही मत। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, अगर कोई एक बार फेल हो गया तो उसको और चांस देना चाहिए। अभी कोई ऐसी एग्जाम्स हैं, मैंने सुना है कि हमारी आईएएस एग्जाम्स होती है जो खाली 3 चांस मिलते हैं, और एक उम्र की भी एक पाबंदी होती है कि 25 या 27 के बाद आपको और चांस नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें आपको एक बार चांस नहीं मिलेगा या उसके बाद अवसर नहीं मिलेगा, उसका मूल कारण ये होना चाहिए कि आप गंभीर बनो। ये अवसर इतना सुंदर है, ये अवसर इतना अच्छा है, उसके लिए आप पूरे गंभीरता से आप पढ़ाई करो, है कि नहीं। जैसे एक पूर्व मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक लड़का बहुत शैतानी कर रहा है, भोजन नहीं खा रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसकी माँ कहती है अभी तू काम करेगा, अभी तू पढ़ाई करेगा और ये जो भोजन है वो पूरा खाएगा, नहीं तो मैं बाहर से सियार को बुलाऊंगी। व्हाट इज वुल्फ इन हिंदी, वुल्फ भेड़िया, भेड़िया सियार से बड़ा होता है, भेड़िया, मैं भेड़िये को दे दूंगी तुमको। तो वो सोचता है भेड़िया क्या होता है, मतलब अगर किसी चीज का डर होना है ना, पहले मालूम होना चाहिए वो क्या है करके। कोई व्यक्ति अगर अल्कोहलिक है, शराबी है, तो डॉक्टर कहेंगे आपका लीवर खराब हो जाएगा, अब उसे पता ही नहीं लीवर क्या होता है तो क्या समझेगा वो। तो आजकल वो काला काला हुआ लीवर का फोटो दिखाते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। फिर किसी का कोई खांस रहा है, कोई मुंह से खून निकल रहा है, बोले ये ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, बोले ओ ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चाहिए। तो एक भेड़िया ये सुन रहा था कि ये मां बोल रही है कि मैं तुझे भेड़िए के पास दे दूंगी, वो तुझे खा जाएगा। फिर तो बाहर आके खड़ा हो गया, तो मां ने दिखाया, देखो वो ना वो भेड़िया है, देखो उसके दांत कितने बड़े बड़े हैं, वो तुमको खा जाएगा। तो बच्चा डर गया, बोला ना 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 मुझे नहीं ऐसे करना। बोले फिर पढ़ाई करो और ये पहले अपना खत्म करो पूरा भोजन। तो वो कर रहा था, फिर कुछ देर तक बाहर से कुछ आवाज आ रही थी, तो माँ ने जाके देखा क्या है, तो वो भेड़िया उधर ऐसे बैठा है। तो माता ने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, बोला हम क्या है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आपके बेटे को बाहर निकालोगे तब उसको खा जाएंगे हम। तो वो बाहर एक डंडा लेके आती है और इतना जोर से मारती है उसके सर पे, बोले चल भाग, तू क्या सोचा मैं मेरे बेटे को तेरे हवाले कर दूंगी। तो वो भेड़िया भागते भागते सोच रहा है ये मनुष्य समाज क्या पागल है क्या है, वो माँ खुद कह रही है कि तू शरारत करता रहेगा तो मैं तुझे भेड़िया के हाथ दे दूंगी, अभी मैं तो कुछ किया नहीं, मैं जाके खड़ा रहा वहां पर कि कब बचाएगा, मैं इसे कब खा लूंगा। और जब उन्होंने पूछा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तो मैंने प्रामाणिकता से बोल दिया कि मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो मुझे मार पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये कोई बड़ी फिलोसॉफिकल ये कोई बड़ा फिलोसॉफिकल मुद्दा पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर भगवान को हमको नरक का डर, पाप का डर देना है, किस लिए, क्या कारण हो सकता है उसका, जब तक ये हम समझ नहीं पाते तब तक स्वर्ग असली है या नरक असली है या ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, इसके बारे में केवल स्पेकुलेशन करना, केवल अटकल लगाना हमें कोई लाभ नहीं है। बीच में बैक टू ऑर्डर मैगजीन में एक आर्टिकल आया था कि किसी पोलिंग का मतलब है पोल, लोगों को पूछते हैं कि इस चीज के बारे में आपका क्या मत है, उस चीज के बारे में आपका क्या मत है। तो अमेरिका में जहां पर प्रभुपाद के दृष्टिकोण से सारे नियम टूट रहे हैं, चार मुख्य, लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ 76% लोगों ने कहा कि मरने के बाद उनका स्वर्ग जाने का चांस एक्सेलेंट है। तो उनको बोला गया कि किस बेसिस पे आप कहते हैं कि आप मरने के बाद स्वर्ग में ही जाओगे, बोले मुझे लगता है ऐसे बस, कोई तो वो स्वर्ग है क्या उनका, बोले वही जहां पर इससे ज्यादा और अच्छा खाना पीना हो, लोग अच्छे हो। तो देखो कैसे कलयुग की बुद्धि हो रही है, लोगों को नरक में विश्वास नहीं है। जिस धर्म में नरक के बारे में कहा जाता है उस धर्म के प्रति द्वेष भावना है कि ये कैसा भगवान है नरक नरक की बात करता है। लेकिन उसी स्वर्ग और नरक की हु इज द रेफरेंस, किसने बताया आपको स्वर्ग और नरक के बारे में, किसी धर्म ग्रंथ है ना। तो उसी धर्म ग्रंथ में से जो स्वर्ग का वर्णन है वो आपको अच्छे लगते हैं पढ़ने में, और वहां जो नरक की वर्णन की गई है बोलते हैं कि ये सब कल्पित है, ये थोड़ी नरक ऐसे होता है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रभुपाद बार बार ये कहते हैं पीपल डोंट हैव अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। आज जब मैं ये पढ़ रहा था कुछ समय पहले तो मुझे एक आश्चर्य हो गया कि कुंती महारानी बार बार हे भगवान आप पक्षपात नहीं करते, हे भगवान आप सबके प्रति समान हो, मेरे ख्याल से 2-3 बार आ गया ये। जो लोग पहले से देख रहे हैं इस सीरीज को 2-3 बार और आगे भी आएगा, समम चरंतम, इसके पहले था समम चरंतम, आप सबके प्रति समान हो, आप कभी इसका द्वेष इसका पक्षपात नहीं करते। मैं सोच रहा था कुंती देवी इज वेरी क्वालिफाइड, कुंती देवी इस निष्कर्ष पर आने के लिए बहुत योग्य भक्त हैं, क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा नौकरी, अच्छी फैमिली लाइफ, अच्छा ये अच्छा वो, और हम कहेंगे कि इंग्लिश में से कहते हैं कि ऑल्स वेल, गॉड इज इन हेवन एंड वी आर हियर, एवरीथिंग इज नाइस, सब कुछ ठीक है, भगवान वहां पे सुखी हैं, हम यहां पे सुखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो डर है। ये भौतिक जगत एक ऐसी जगह है जहां पर कोई इक्वालिटी नहीं है, इन द सेंस इक्वालिटी मतलब समानता किस रूप से नहीं है, कि जिस प्रकार से आप अपना मन करोगे कि मैं इस प्रकार सबसे प्रेम से रहूंगा, अगर मैं सबको प्रेम दूंगा तो मुझे प्रेम मिलेगा कि नहीं, हाँ मैं अगर सबसे सच बोलूंगा तो लोग मुझे सच बोलेंगे कि नहीं, मैं अगर सबको समानता से देखूंगा तो सब मुझे समान देखेंगे कि नहीं, नहीं होता ऐसे। तो जब खास करके कई नॉवेल या फिल्मों में ऐसे ही होता है कि वो नायक बताया जाता है कि मैं सबसे प्रेम से रहूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, फिर कोई व्यक्ति उसके प्रति बेईमानी या उसको उसके पीठ में छुरा भोंकता है, और फिर वो कहता है कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, अब मैं सबको ठीक कर दूंगा, या तो जो पहले 10 मिनट की जो प्रेम और सद्भावना की बात होती है उसके बाद 1 घंटे 50 मिनट का केवल विध्वंस, नाश। और ये जो नॉवेल या फिल्म के नायक हैं, ये कोई वास्तविक नायक नहीं, ये हमारा मन है। क्यों ऐसी आइडियाज को, क्यों ऐसी विचारधारा को इतना सपोर्ट मिलता है समाज में, लोग इसको इतना सराहना से क्यों देखते हैं, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हाँ कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मैं भी अगर चाहूं तो मेरे दुश्मनों के प्रति ऐसी प्रतिशोध, ऐसा प्रतिशोध, ऐसा रिवेंज लूं कि सबको नष्ट कर दूं। लेकिन जब सब कुछ नष्ट होता है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे रे ये मैंने क्या किया, वो इतना तो बुरा नहीं था। तो पक्षपात अर्थात पार्शलिटी, ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर जो माता पिता हैं जिनके एक से अधिक संतान है, मतलब 2 या 2 से अधिक, अगर आपके घर में ऐसा नहीं हुआ है तो अपना सद्भाग्य समझना चाहिए। बट यू हैव टू लिसन टू दिस, कभी ना कभी तो दोनों में से एक कोई अगर बोलेगा कि मम्मी आप मेरे से पक्षपात करती हो, आपने इसको ये दिया मुझे क्यों नहीं दिया, और आप कहेंगे अरे रे क्या इसमें पक्षपात है, वो तो आपसे छोटा है, छोटा है तो क्या हो गया, या छोटे को कहा था ये मुझे क्यों नहीं दिया, ये मुझे क्यों मिला, उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, अरे वो आपसे बड़ा है, अरे बड़ा है तो क्या हो गया, फैमिलियर। तो हालांकि माता पिता के मन में कोई पक्षपात की भावना नहीं होती, जैसे भगवान कृष्ण गोपाल छोटे अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और कभी कभी वो मजाक करते हैं, तो एक दिन सारे उनके सखा सोचते हैं कि आज इनको हम बराबर वही सबक सिखाएंगे, तो सारे बच्चे एक दिन खेलते खेलते सर अचानक हंसने लगे, हो हा हा, तो उन्होंने कहा क्या हो गया आज अचानक आप हंस क्यों रहे हैं, बोले हमारे सामने एक पहेली है, हम उसकी उसका उत्तर नहीं मिलता हमको, तो उन्होंने कहा क्या पहेली है, बोले नंद बाबा गोरे हैं, बोले हाँ, यशोदा मैया गोरी है, बोले हाँ, आपके भाई बलराम जी बलदाऊ वो गोरे हैं, बोले हाँ, अरे फिर तू काला कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, इसमें कोई कोई समस्या है क्या, इसमें मेरा अपना सांवला रंग है, सुंदर हूं मैं भी, वो बोले सुंदरता की बात दूर, माता पिता अगर इतने गोरे हैं और उनकी एक संतान इतनी गोरी है तो दूसरी संतान काली नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है ऐसे, बोलो ना इसका मतलब यह है, बोले क्या, कि आप नंद बाबा यशोदा के पुत्र नहीं हो? अरे बाप रे, ये जो छोटे गोपाल के मन में एक विचार आ गया कि ये मेरी मैया नहीं है, ये मेरे बाबा नहीं है, तो क्या मैं किसी और का हूं? और वो रोते रोते अपने तुरंत उधर ही उनका पूरा धीरज विरज सब निकल गया, मैया के पास रोते रोते आ गए। और फिर अच्युता मैया उनको बहुत प्रेम से समझाती कि नहीं, आप मेरे ही हो, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, देखो नंदा बाबा कितना प्रेम करते हैं। तो बहुत समय लगा उसको जाने में। अतः ये भी इस श्लोक में प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं कि कोई आपकी लीलाओं को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो मानवीय प्रतीत होती है। एक बार एक व्यक्ति एक हमारे भक्त से बहस कर रहे थे कि आप लोग का कृष्णा कॉन्शियसनेस बड़ा अच्छा है। बोले क्यों? बोले सबसे पहले एकदम एक चिकना चुपड़ा भगवान का एक प्रतिमा बना दिया आपने कि ये इतनी सुंदर है, इसके बाल घुंघराले हैं, फिर वो मोर पंख पहनते हैं, और एकदम छोटी सी मूर्ति है उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका मतलब क्या है? बोला मेरा मतलब ऐसा है कि आप लोगों ने जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे जो उदात्त सबलाइन ब्यूटी जो भी कुछ है ना, ये सब अपने भगवान के ऊपर ऐसे लाद दिया है और आप उसकी पूजा करने लगे। तो बोले नहीं 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 ऐसे नहीं है, ये जो नॉलेज है भगवान का वो परंपरा से आता है, ये एक के बाद एक के बाद एक गुरु समझाते हैं वैसे ही ज्ञान आता है। बोला ना, ये पहले किसी व्यक्ति ने एक अच्छी कल्पना की है कि अगर हम भगवान के बारे में ऐसे कहानी ऐसे ये बनाएं तो क्या होगा, इससे लोगों का मन मनोरंजन हो जाएगा। और मतलब ही एग्रीड, कृष्णा इज ए वेरी अट्रैक्टिव गॉड, इसके बारे में कोई उनके मन में संदेह नहीं था। तो जैसे हमारे ये न्यूयॉर्क के भक्त बताते, गदाधर पंडित प्रभु बता रहे थे कि आजकल वहां के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कोलंबिया में या और दो तीन जगह जाते हैं वो न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में, अगर कहेंगे कि भगवान एक जगह पर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये खास भगवान की एक प्रतिमा ऐसी है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा है ऊपर और उसके हाथ में थंडर बोल्ट वज्र है उसके हाथ में, और उसका काम क्या है, दिन भर देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, छोड़ा उसके ऊपर। तो वो कभी कभी सोचते हैं वो ये भगवान को और कोई काम नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हमेशा वो टांग अड़ाता है, ये करता है, वाई कांट गॉड माइंड इज ओन बिजनेस? आजकल ऐसे पूछते हैं प्रश्न लोग कि भगवान अपना काम क्यों नहीं करते, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, हम दोनों सुखी है। We should understand how human society has been far removed from God consciousness. जब मानव ये सोचता है कि भगवान अपने जगह काम करें, मैं अपना काम करूं, हम दोनों सुखी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी ना कभी तो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पूरा ये संसार असार है, या यहां पर इतना डर है, यहां पर इतने संकट आ सकते हैं, इसका रियलाइजेशन, इसका पूर्ण साक्षात्कार होता है। इस दुनिया में माया है, एटलीस्ट वी ऑल एग्री यहां पर माया है, वी आर डिवोटीज, हम लोग रोज अध्ययन करते हैं तो रोज माया है, माया है। ये माया का मतलब भ्रम, इल्यूजन, भले संकट है लेकिन वो इल्यूजन के अंडर है। जब हम इल्यूजन भ्रम के ऊपर कॉन्सेंट करते हैं तो वी बिकम एनलाइटेंड, तब ही केवल हम उस चीज के बारे में अच्छी ढंग से सोच सकते हैं। अगर हम उस संकट के ऊपर कॉन्सेंट करेंगे, फिनिश्ड। अगर केवल संकट है, संकट है, संकट है, तो फिर वो संकट हमारे छोटे से मन बुद्धि अहंकार को पूर्ण रूप से अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये एक इल्यूजन है, ये सत्य नहीं है। अगर संकट सत्य है तो यहां पर जो प्रॉस्पेक्ट्स है, यहां पर जो अच्छी हो रही बातें हो रही है, वो भी तो एक इल्यूजन का ही एक हिस्सा है। एक भक्त के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है हर एक चीज को। और इल्यूजन का मतलब ये नहीं कि ये सब है ही नहीं, मैं यहां पर इस कुर्सी पर बैठा नहीं हूं, ये यहां पर टेबल है ही नहीं, ऐसा इल्यूजन नहीं। ओ तो है, दर्द करता है, मतलब ये सत्य है। हमारे दीनबंधु प्रभु जो ब्रज में सबको टूर कराते हैं, ब्रज कथा ब्रज लीला सुनाते हैं, वो पहले एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन सीख रहे थे। वो क्या मेडिटेशन था? एवरीथिंग इज इल्यूजन, सब कुछ भ्रम है, कुछ सत्य है ही नहीं, ये बिल्डिंग सत्य नहीं है, ये हॉस्पिटल सत्य नहीं है, ये सब कुछ। ऐसे सोचो तो सब कुछ जीरो है, तो आपको आराम मिलेगा। और वो हिप्पी लोगों के साथ रहते थे, तो जिस ग्रुप के साथ थे वो, उनमें से दो तीन लोगों के पास हशीश गांजा चरस ऐसे कुछ मिला, तो सबको 24 घंटे के लिए जेल में जाना पड़ा, 24 घंटे ज्यादा नहीं। लेकिन उनको बहुत तकलीफ हो गई, उनको कष्ट हो गया कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो खाली इनके साथ था, तो पूरे ग्रुप को पकड़कर क्यों इन्होंने सजा दी। तो बाकी लोग तो सोचने लगे अरे अभी तो 24 घंटे कुछ चरस पीने को नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी, और उनको एक छोटे से जेल में डाला गया। वो जेल कैसा था? एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें आदमी ऐसे मुश्किल से बैठ सकता है, सो सकते हैं पूरा, लेकिन बैठने के लिए बहुत कष्ट है, और उसमें जाली थी ताकि हवा आ जाए। तो उनको बोला इधर बैठो इधर, और बाहर से ताला मार के वो पुलिस चला गया। वो देख रहे हैं बाकी लोग सब, कोई रो रहा है, कोई बोल रहा है अरे बुरे फंसे। तो इन्होंने सोचा कि मैं इस समय क्या करूंगा, मैं अपना मेडिटेशन चालू करता हूं कि ये सब झूठ है, मैं इनके साथ नहीं था, मुझे पुलिस ने पकड़ा नहीं, मुझे जेल में डाला नहीं, और मैं अभी यहां पर नहीं हूं बस। तो उन्होंने सोचा लेट अस सी ये मेडिटेशन मुझे कितनी मेरी सहायता करता है। तो आधे घंटे तक ऐसे एकदम ध्यान लगाकर कि ये सब झूठ है, संसार असार है, सब झूठ है झूठ है। और अचानक उनको एकदम अच्छा लगा कि अरे आई एम फ्री, और आई एम फ्री होते उन्होंने जोर से अपने हाथ ऊपर कर दिए, आई एम फ्री टोंग। तो बोले ओ, बोले फ्री तो हूं, फिर ये दर्द क्यों कर रहा है इतना? ना 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 ना, ना ये हाथ भी झूठा है, दर्द भी झूठा है, ओ फिर भी दर्द कर रहा है। वो बोले ये इतना, एक किताब मुझे वो पढ़ाती थी ये मेडिटेशन, वो किताब मेरी फेवरेट बुक थी, मैं उसको हमेशा पढ़ता था, और उस दिन के एक जेल कारागार वास में मेरा सारा मेडिटेशन ही पूरा टहस महस हो गया। मैंने कहा झूठ है, तो दर्द हो रहा है, एक तो दर्द होता है, दूसरी बात ये कि मैं जेल से बाहर नहीं हूं, मैं चाहे कितना भी सोचूं अपने आप को बताऊं कि मैं बाहर हूं, मैं मुक्त हूं, ये पुलिस कुछ मुझे कर नहीं सकती, आई एम हेल्पलेस। इसलिए जब वो बाहर आ गए, उनको एक प्रभुपाद की किताब मिली है, तो तुरंत उन्होंने सोचा कि ये बात सही है, इल्यूजन डजंट मीन नॉन एग्जिस्टिंग, भ्रम का मतलब ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं, भ्रम का मतलब यह है कि वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। तो कोई कहेगा इसमें आप कौन सी बड़ी फिलोसफी की बात कर रहे हैं, टेम्पररी हम सब जानते हैं। कई लोग हैं बाहर, उनको पूछोगे हाउ इज लाइफ, जिंदगी कैसी जा रही है, बोले चार इनकी जिंदगी है। बोले ये तो बड़ा फिलोसोफर हो गया, मतलब तो क्या करो, मौज करो, ये प्रॉब्लम है। चार दिन की जिंदगी है, ये बड़ा फिलोसॉफिकल सत्य है, उसके लिए उपाय क्या है, तो मौज करो ना, दैट इज अ डेंजर पॉइंट। ये मौज करने के इरादे से, ये मौज करने के काम से फिर वो चार दिन की जिंदगी वो नहीं रहती, वो दैट इल्यूजन इज परपेचुएटेड, परमानेंटली घूमता रहता है वो साइकिल। तो हम इसको बाद में थोड़ा देखेंगे इस पॉइंट को, कि भगवान की सुंदर लीलाएं ये कुछ हमारी अपनी मन की जो इच्छा है उसको हमने भगवान के ऊपर लादते हैं हम, कि वास्तविक ये नित्य सत्य है। न तो आपका कोई कृपा पात्र है, न ही कोई आपका द्वेष भाजन या अप्रिय है। कुंती देवी ने आज तक जिस समय वो प्रार्थना कर रही है, हमने पहले कुछ लोगों में देखा इतने संकट झेले हैं और इतने कष्ट आ गए जीवन में, फिर भी वो भगवान कृष्ण से यही बात बोल रही कि नहीं, आपका कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। लोगों की यह कल्पना है कि आप पक्षपात, लोगों की यह कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को थोड़ा समझाना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इस तरह से आरंभ होता है, भगवान पतितात्माओं पर समान रूप से दयालु हैं, वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। एक मनुष्य पक्षपात कर सकता है और ऐसा होता ही है। एक मंत्री थे, वो मंत्री महोदय ने अपने भाई को एक बड़े स्टेट डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव का चेयरमैन बना दिया। तो एक रिपोर्टर ने कहा ये सारासार पक्षपात है। वो बोले क्या पक्षपात है इसमें, मेरा भाई है आखिरी वो। मतलब उनको ये समझा भी नहीं कि वो रिपोर्टर क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आप जब मिनिस्टर हो तब आपने आपके भाई को ये पोजीशन क्यों दिया, और वो सोच रहे हैं अरे मैं उसको ये पोस्ट दूंगा तो और कौन देगा, वो मेरा भाई है वो। ये आज की स्थिति है। ये मेरा मत नहीं है, कहीं पे मैंने पढ़ा था। ये इंडिया का भी एक स्पाई नेटवर्क है, कभी कभी हम सोचते हैं शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन है। ऑफिशियली हमारे लोग हैं ऐसे जो काम करते हैं, और अच्छे आईएएस के लोग हैं, पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट। उसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW, रॉ। अब ऐसा नाम क्यों दिया है, किसका रिसर्च करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, कोई पता नहीं। लेकिन वहां पे एक बात ऐसी हो गई है कि पिछले 30 वर्षों से या पिछले 20 वर्षों से कम जो वहां पे डायरेक्टर थे, तो वहां पे उसका सगा भाई है, वहां पे उसका कोई चचेरा भाई है, यहाँ पे मौसेरा भाई है, यहाँ पर कोई चाचा है, और ऐसे हर डिपार्टमेंट में एक ही फैमिली के 5, एक फैमिली के 7, एक बिरादरी के 10। तो एक व्यक्ति ने जो छोड़ दिया उसको कि यहाँ पर इतना नेपोटिज्म और इतना यहाँ पर ये है, तो वो भी एक उधर का ऑफिसर ही था, उसने कहा ये रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स विंग है, ये रिसर्च एनालिसिस नहीं होता यहाँ पर, केवल अपने रिलेटिव्स, केवल अपने एसोसिएट्स, उनको ये अच्छी फैट सैलरी वाली नौकरी कैसे मिले, यही वहां पर देखने की बात है केवल। तो ऐसे हो सकता है लोग अपने अपने लोगों से, जैसे भक्तिस्थान थोड़े ठाकुर, वो भक्ति ठाकुर से तो दीक्षा ले सकते थे ना। तो भक्ति विनोद उनको कह रहे हैं बार बार वैष्णव दीक्षा लो, वैष्णव दीक्षा लो, तो वो कह रहे कि आप मेरे पिता हो, आप ही दो ना मुझे। बोला ना मैं नहीं दूंगा, ऐसे लगेगा फिर मैं पक्षपात कर रहा हूं। तो ही वॉज केयरफुल। वैसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चुना ज्ञान के लिए, क्यों, कोई और कोई था ही नहीं, देयर वाज नो अदर कैंडिडेट। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। नारद ने शुकदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया, तो लोगों ने ये नहीं कहा है अपने ही पुत्र क्यों दे रहे हैं, बाकी यहां पे इतने पढ़े हैं क्या, पढ़े नहीं क्या, नहीं, बट यू आर क्वालिफाइड। लेकिन जैसे ही वो युग आगे बढ़ते गया, वैसे हम देखते हैं कि इवन स्पिरिचुअल मास्टर्स आर बिकमिंग मोर केयरफुल। श्रील प्रभुपाद के 3 पुत्र थे, उसमें से जो छोटे वृंदावन चंद्र दे, तो उनके बारे में प्रभुपाद के लेटर्स हैं कि नहीं वो मेरा बेटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी शुड फेवर हिम अननेसेसरीली। उसके लिए मैंने एक रूम दिया है, उसको मेरी बुक्स बेचने का कमीशन दिया हूं, एक बिजनेस दिया हूं, लेट हिम सेल द बुक्स एंड देन गेन कमीशन। मतलब प्रभुपाद वॉज सो केयरफुल, प्रभुपाद इतने जागरूक थे कि मेरे बेटे के प्रति मैंने कुछ पक्षपात किया है, ऐसा बाद में कोई ना कहे। और वास्तविक श्री प्रभुपाद सदैव अपने शिष्यों से कहते थे कि यू ऑल आर माय सन्स एंड डॉटर्स, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, जो आध्यात्मिक नाता है, वो वास्तविक नित्य है। बायोलॉजिकली पुत्र हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं कि ये मेरे पुत्र नहीं है करके, बट मोर देन दैट जो शिष्य है उसको प्रभुपाद ने अधिक पुत्र समझा। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे होती है दिव्य और भौतिक कल्मश सर्वथा रहित। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वे कभी पक्षपात न करते नहीं। जिस प्रकार की ये एक चीज श्रील प्रभुपाद बार बार यूज करते हैं और हमको भी समझने में आसान होनी चाहिए, एक कोई स्पिरिचुअल ट्रुथ है, कोई आध्यात्मिक सत्य है। क्या उस आध्यात्मिक सत्य का कोई एक भौतिक उदाहरण हम देख सकते हैं? मैं कुछ दिनों से इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद के पर्पोट्स में से कुछ जमा कर रहा हूं कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, भगवान ने ये मायावी संसार बना दिया, लेकिन भगवान इस मायावी संसार में खुद कभी लिप्त नहीं होते। गीता में कहते हो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मस्फले स्पृहा। अर्जुन, मैं कोई काम करता हूं तो उसमें मैं उस काम से कोई स्वार्थी हेतु का लाभ नहीं करता, और आम मनुष्य या प्राणी पशु कीट वनस्पति जो भी कोई हो उसकी अपनी अपनी चेतना के अनुसार उसको उस काम से कुछ मतलब है, कुछ चाहिए उसको, स्वार्थ की भावना है। तो मैं सोचा ये भगवान क्यों लिप्त नहीं होते, भगवान क्यों अटैच नहीं होते? अरे वो भगवान है, वो तो पावरफुल है। मैंने कहा नहीं, मुझे और कुछ चाहिए, आई वॉन्ट सम मोर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। तो उसे ही एक जगह पर मिला, कौन किससे कह रहा है इतना याद नहीं अभी, लेकिन भागवतम ही है वो, कि जैसे एक स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, वो अपने मुख से कुछ सब्सटेंस निकालकर उसकी जो लार होती है सलाइवा और कुछ मिक्सचर है उसका अंदर, वही निकालकर वो जाल बनाता है। मैंने मायापुर में देखा एक दिन, अगर वो हमारे मायापुर चंद्रदेव मंदिर के पीछे पहले बहुत खेत, अभी भी खेती है वहां पर, जो गुरुकुल का रास्ता है ना, वो मेरा फेवरेट था रास्ता सुबह सुबह जप करने लिए या जाने के लिए। तो ये रात को कीड़े आते हैं या मक्खियां आती है, तो शाम के समय ये मकड़ियां जब वेरी बिजी वो अपना जाल बनाते रहते हैं, मतलब उनका देखो ना क्या उनका इंडस्ट्री है, दो टू ब्लेड्स ऑफ ग्रास, दो घास की पत्ती के बीच में वो अपना जाल बिछा देते हैं, ऐसे पूरा जैसे बास्केट वॉलीबॉल का नेट जैसे होता है वैसे। और जैसे ही अंधेरा हो गया तो सब कीड़ों को अंधेरे में दिखता नहीं, कभी कभी वो अंदाज से जाते इधर उधर, और इनवेरिएबली सुबह के समय जैसे अभी एकदम 5:30 बज गए तो मायापुर में पूरा प्रकाश आ जाता है, तो देखते हैं कि हर एक मकड़ी में एक दो कोई तो अटका हुआ है, मतलब वो रात को अटका होगा उधर, वो रात को अटक गया उधर, इतने घंटे कुछ खाने को मिला पीने को नहीं मिला, और वो मकड़ी वहां पर ऐसा देखता रहता है, वो उसको मालूम है अंदाज से कि ये कब इसकी शक्ति पूरी निकल जाएगी, क्योंकि अभी वो केवल मेरे नेट में अटक गया है, अगर मैं उसको पकड़ूं नेट से बाहर निकालूं तो शायद उसकी शक्ति होगी कि वो उड़ जाएगा। तो ही वेट्स, वो देखता है कि ये कब तक पूरा अटक जाएगा उसमें, और फिर आकर उसको वो खा लेता है। तो मैं ये देख रहा था कि ये मकड़ी चलेगा कैसे, क्योंकि वो नेट क्या है, पूरा चिपकाना एकदम एडेसिव है, बाकी सारे कीटक उधर से जाएंगे तो चिपक जाते हैं, तो अगर सब कुछ चिपक जाता है तो मकड़ी भी चिपकना चाहिए ना। तो उसके पैरों के ऊपर एक ऐसा कोटिंग है कि वो चलेगा तो वो नहीं चिपकता उसके ऊपर। तो मैंने कहा ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जस्ट अंडरस्टैंड कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हाउ मच सोफिस्टिकेशन इज एट वर्क। अपने शरीर से कुछ चिकनाहट, कुछ चिपकने वाली वस्तु को पहले पैदा करना, जैसे अगर आपके मुंह में अगर कोई चिपकनी वस्तु है तो आप उसको निकाल सकते नहीं ना, कभी कभी हम जैसे च्युइंग गम खाते थे तो इधर अटक गया, हाथ निकाले तो इधर भी अटक गया, हाथ को भी अटक गया, क्योंकि सब जगह पे चिपकाने वाला है वो। ये एक मामूली, और स्पाइडर मतलब क्या है, कोई स्पाइडर मैन कोई सुपरमैन ऐसा हो सकता है, लेकिन ये स्पाइडर मामले तो कोई स्पेशल व्यक्ति है नहीं ना। तो वो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में यही विचार आ गया कि लो हाउ कृष्णा क्रिएट्स एंड हाउ ही डजंट गेट एंटैंगल्ड, ये इतना बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि भगवान माया सृष्टि की रचना करते हैं लेकिन हां अपनी माया में वो कभी फंसते नहीं। इसका उत्तर भगवान कैसे दे रहे हैं, बोले अरे आंखें खोल के देखो, ये मामूली मकड़ी अगर अपने किए हुए क्रिएशन में फंसती नहीं तो मैं क्यों फंसूं। मकड़ी कोई बहुत इंटेलिजेंट प्राणी नहीं है या कोई बहुत ऐसे सोफिस्टिकेटेड ऐसा कोई प्राणी नहीं है। भागवत में उसका नाम है ऊर्ण नाभि, यथा ऊर्ण नाभि। आज एक दूसरा उदाहरण मिला, हाउ कृष्णा इज नॉट पार्शल। श्रील प्रभुपाद बताते हैं सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है। एक प्रकार का पत्थर है जो सूरज से प्रकाश लेता है, उसका नाम संस्कृत में है सूर्यकांत। अभी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है लेकिन यह वास्तविक पत्थर है। कोई पत्थर है जो चंद्र से प्रकाश लेता है, उसका नाम हो गया चंद्रकांत, और ये बहुत बहुमूल्य पत्थर है, मामूली पत्थर है वो, लेकिन वो सूरज का प्रकाश ले लेके, आजकल दिखते नहीं वैसे के है, आजकल प्रेशर स्टोन्स में मिलता है कोई पता नहीं, लेकिन ये सूर्यकांत जो मणि है उसकी एकमात्र स्पेशलिटी ये है कि उसने सूरज का प्रकाश अच्छी तरह से अपने आप में लेकर नाउ ही हैज बिकम वैल्यूएबल। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं, अरे देखो सूरज के प्रकाश से जब पत्थर को वैल्यू मिल सकती है तो नॉर्मली ये होना चाहिए कि फिर सबको वो प्रकाश का लाभ होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी नहीं देख पाता। अंधा व्यक्ति है वो भी सूरज को नहीं देख पाता, और अंधे को अगर कहें कि सूरज दिखता है, बोला ना, ये दोष किसका है, बोला सूरज का, मेरी इच्छा है देखने की लेकिन सूरज नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं, उसका दोष है। जैसे धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के समाप्ति के समय उनके मन में कुछ इच्छा है, वासुदेव भगवान जानते हैं, वो कहते हैं धृतराष्ट्र मुझे देखो, तो वो सोचते हैं कि मेरा मजाक कर रहे हैं वासुदेव, आप तो जानते हैं कि मैं तो अंधा हूं, धृतराष्ट्र मैं कहता हूं मुझे देखो, तो वो कह रहे हैं कि ये आप आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बोले मैं कहता हूं मुझे देखो। और धृतराष्ट्र के मन में, उनके मन में शुद्ध प्रेम भक्ति का भाव तो नहीं है लेकिन एक इच्छा है, और उस इच्छा को रेसिप्रोकेट या उस इच्छा को एक प्रतिसाद देने की भावना से कृष्णा फोर्सेस हिमसेल्फ इन धृतराष्ट्रस विजन। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने खड़े होते, उनको दिखते हैं वो। अब आप कहेंगे ये तो अंधा है फिर कैसे दिखाई दिया, कृष्ण के लिए कोई भौतिक ब्लाइंड है या कोई ऐसे कोई, देर इज नो मटीरियल ऑब्स्टेकल फॉर कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए कोई भौतिक परिस्थिति, कोई भी भौतिक परिस्थिति अवरोध नहीं बन सकती। इसीलिए यह व्यक्ति ऐसी गारंटी दे सकता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ऐसा कोई पाप, ऐसा कोई अड़सर, ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता। डू नॉट फियर, डरो मत। अभी हम कहेंगे डरो मत, हमारी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है डरो मत, हमारे पास पैसा दे दो इंश्योर करो, इंश्योर एंड बी श्योर कहते ना ऐसे। लेकिन आजकल इतिहास में कितनी बार दिखाई दे रहा है, जैसे 2 साल पहले अमेरिका में एक के बाद एक बैंक्स गिरती जा रही है। एक बार मैं सुबह आ रहा था हमारे पेडर रोड के ऊपर से, देखा था उधर एक बैंक के सामने 500-600 लोग खड़े हैं, और क्या हो गया, अरे सुबह पेपर में आ गया कि वो बैंक का चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि कुछ था गड़बड़ अकाउंट्स में। तो ये नहीं है कि केवल बैंक के पास या रिजर्व बैंक के पास पैसा छापने की मोनोपोली है, सो दे आर लाइक श्योर। नहीं, इस जगत में कोई भी इस तरह से श्योर नहीं हो सकता। लेकिन अगर भगवान के इतिहास को भी देखा जाए, भगवान की लीलाओं को देखा जाए, ये चैलेंज है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति दिखाओ जो कृष्ण के शरण में आया हो और निराश लौट गया कि अरे इनके पास आया था लेकिन कुछ मिला नहीं शायद, या जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। हाउ इज इट पॉसिबल? एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, एक भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जो कृष्ण के पास आकर असंतुष्ट होकर गए हो। हां, जिन्होंने कृष्ण के सामने आकर यह बात कही है कि मुझे आपको मारना है, या आप मरते क्यों नहीं, या मुझे आपको नष्ट करना है, उनको भगवान ने टेम्पररीली कुछ ऐसा सॉल्यूशन दिया होगा कि ठीक है कुछ समय के लिए मैं आपके जीवन से चला जाता हूं, या कुछ समय में आपको आपके लिए मैं अदृश्य हो जाता हूं। लेकिन परमानेंट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेन पॉइंट यहां पर श्री प्रभुपाद ने यह आरंभ किया है इसके इस तत्पर्य के आरंभ में, सूरज एक मामूली पत्थर को अपने किरणों से वैल्यूएबल बना सकता है। हम भी अगर उस पत्थर की तरह रहें, जस्ट स्टे आउटसाइड इन द सनलाइट, डोंट डू एनीथिंग, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाली उस प्रकाश को ले लो, द स्टोन बिकम्स वैल्यूएबल। दूसरा चॉइस हमारे पास क्या है कि स्पिरिचुअली ब्लाइंड होने के नाते के कारण हम उस सूरज को ही दोष देते रहे कि मैं नहीं देख सकता, ये आपका दोष है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका दोष है। तो हम देखेंगे कि जीवन में दो ही प्रकार के, ज्यादा करके इवन फिलोसोफर्स में, कुछ हो गया, कुछ संकट आ गया परिवार में, अभी मेरा भगवान का विश्वास उड़ गया, ये संकट क्यों आया, इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई, ये मेरा ऐसे नुकसान क्यों हो गया, ये मैं बीमार क्यों पड़ गया। ऑल दिस कुड बी रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। तो कुंती देवी जैसे महान भक्तों की सहायता से अगर हम भगवान को देखने की कोशिश करेंगे, विल कम टू द राइट कंक्लूजन, हम सही निष्कर्ष पर आएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है या कोई कॉमेंट्स? माइक है?
नर्क के बारे में पहले मैं पूछना कि हालांकि हम जानते हैं, आपने तो उदाहरण दिया वो भेड़िए का, तो माँ ने वास्तव में नहीं चाहती थी उसको, लेकिन नर्क वास्तव में होता है। और जब भी मैं नर्क में, तो मुझे समझ आता है कि भगवान दयाल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि वो इतना तुझे कैसे कोई अपने बच्चे को दे सकता है, जैसे उसमें जैसे भागवत में वर्णन आता है कि वो अनंत काल तक वो उसको पढ़ाई में उबालते रहेंगे, और अगर उसने ज्ञान किया है तो उसने कुछ ऐसा
इनका प्रश्न सही है कि अगर किसी को लाखों साल तक के कढ़ाई में उबालते रहो, और अगर जैसे माताएं कुकिंग करती है तो दो छींटे अगर गर्म तेल की उड़ी तो कितना दर्द होता है, तो सोच भी सकते नहीं कि जैसे ये पकौड़ा अभी अंदर है वैसे मुझे अंदर रखा गया वहां पे। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से दूंगा। अगर गवर्नमेंट ने यहां पर, मतलब आज के इससे तुलना मत करो, लेकिन आइडियल गवर्नमेंट के एक रेलवे स्टेशन बनाए हैं, फिर रास्ते बनाए हैं, फिर स्वेज की व्यवस्था है, बिजली आती है घर में, और म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट कचरा उठाने के लिए है, स्कूल है, कॉलेज है, एयरपोर्ट है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट सब कुछ ठीक ढंग से कर रही है। और जैसे ये कसाब एंड कंपनी, उन्होंने आकर जो भी कुछ किया, एवीटी सेशन पर लोगों को मारा, आया ताज होटल में गए, एक क्षण के लिए इमेजिन करो कि उन सब को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। देर इज नो प्रिजन, देर इज नो जेल, देर इज नो पुलिस डिपार्टमेंट, देर इज नो आर्मी, देर आर नो वेपन्स। जेल नहीं है, कोर्ट नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं है और पुलिस नहीं है, तो क्या, तो खाली पेपर में ऐसे आएगा कि कुछ लोग आए, उन्होंने 10 लोगों ने इतना 60 तक 70 घंटे तक किया कुछ, बाद में उनका अपना बंदूक और कारतूस खत्म हो गई इसलिए वो चले गए वापस, तो क्या जितना स्टॉक लेके आए थे वो सब खत्म हो गया, अभी क्या करें, और हमारे सामने जा रहे हैं वापस, वो जिस बोट से आए उसी बोट से वापस जा रहे हैं, तो क्या हम केवल प्रतीक्षा करते रहे कि अभी वापस कब आएंगे वो। वुड यू लाइक टू स्टे इन सच ए सिटी जहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? नो। तो क्योंकि ये संसार रिबेलियस सोल्स जो बगावती हैं, जिनको भगवान के साथ कोऑपरेशन करने की इच्छा नहीं है, उनके लिए बनाया गया है। तो अगर हम कहते हैं कि भगवान का इंटेलिजेंस सबसे सुप्रीम इंटेलिजेंस है, तो मानव का इंटेलिजेंस जो कि सुप्रीम नहीं है, उसकी बुद्धि चलती है कि अगर शहर बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, रास्ते बनाने हैं, अरे पहले जेल बनाओ। तो वह कहेगा, अरे क्यों इतनी मनहूस बातें करते हो, अगर प्रेम से सब रहेंगे, आराम से रहेंगे, तो जेल की आवश्यकता नहीं होगी। बोले ना, ऐसे नहीं होता, एक बार आपने शहर चालू किया ना, तो जेल की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे नहीं कि जरूरत पड़ने के बाद बनाना चालू करो। इंटेलिजेंस का मतलब है कोई चीज होने से पहले, जैसे डॉक्टर हो आप, तो कल अगर कुछ ऐसे हो जाएगा, इसकी आंखों में शायद ऐसे हो सकता है, चलो पहले से ही एक हम छोटी सी सर्जरी करते हैं या कुछ ऑइंटमेंट देता हूं मैं, जिससे कल की ये व्यवस्था ना हो, दिस इज इंटेलिजेंस। तो ये चीजें बनाने में भगवान ने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि की, बुद्धि का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये बात रही कि आपको लगता है कि ये सजा थोड़ी ज्यादा ही है, थोड़ी ज्यादा सीवियर है, ये किसी को एक कांटे की पेड़ के ऊपर चढ़ाओ उसको, फिर उसको एक रस्सी बांधी है, फिर उसको खींचो ताकि वो नीचे आएगा तो कांटे उसको लगते जाएंगे। इन वन सेंस ये अगर हमको देखने में क्रूएल, हमको देखने में बहुत हिडियस, बहुत ज्यादा ये लगता है, तो दिस इज टू डिटर समवन फ्रॉम डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट। शास्त्र में केवल नरक की ऐसे वर्णन नहीं किए गए कि बस ऐसे नरक हैं, और आपका अगर नंबर लग गया गलत तो शायद आप उसमें जा सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे मैंने सुना था, ये मोस्ट प्रोबेबली इज इमेजिनरी, लेकिन शायद कभी कभी ऐसे हो भी सकता है। आजकल की बहुत सारी एग्जाम होती है ना, अलग अलग प्रकार की, एमपीएससी, यूपीएससी, या इतनी सारी एग्जाम्स हैं, इतने सारे और एग्जामिनर्स तो कम है। तो ये हमारे कॉलेज के समय का जोक था एक, कि एग्जामिनर क्या करता है, उसके सामने 4000 पेपर्स हैं, उनको उसको 10 दिन के अंदर सबको इवेल्यूएट करके देना है। तो एक जोक था ऐसे कॉलेज में कि वो सारे पेपर्स को वो कॉलेज के एक सीढ़ी पर रखते, ऐसे धक्का जाता है और गड़गड़ 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 जो सारे गिरचे गिर जाते हैं, जो सबसे नीचे गिरते हैं ऑल फेल। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाओ, वैसे सेकंड क्लास, फिर थोड़ा फर्स्ट क्लास, और जो बिल्कुल गिरा नहीं है वो डिस्टिंक्शन। क्योंकि ये जो क्यों पैदा हो गया, मतलब उसका कारण क्या था, कि एक व्यक्ति एक एग्जामिनेशन के ट्राई दिया, उसने एक अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो वो सोचा अरे मैं तो पढ़ाई किया था, ये कैसे फेल हो गया, फिर चाहे जाने दो, अभी उसकी कुछ दूसरा कुछ जॉब वॉब चल रहा था। दूसरे अटेम्प्ट में उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जो पहले पढ़ाई की थी उसी याददाश्त के दौर पर, दूसरी बार अटेम्प्ट दिया तो डिस्टिंक्शन में पास हो गया। तो उसके मन प्रश्न आ गया कि कोई एग्जाम चेक करता है कि भी नहीं, ये कलयुग की व्यवस्था है। तो हम सोचते हैं कि क्या वो ऊपर भी ऐसी व्यवस्था है कि बहुत दिन से ये कढ़ाई में तेल उबल रहा है और कोई अभी तक कस्टमर नहीं आ रहा है, उधर के यमदूत बोल रहे अरे क्या इतना फ्यूल जा रहा है, कोई तो लाओ। तो चलो आर्बिट्रली किसी को पकड़ो, आज आज यहाँ पे जो भी मरेगा वो पहले इस कढ़ाई में। ऐसे नहीं होता, हर एक चीज का पहले वार्निंग दिया जाता है। ये जो कढ़ाई वढ़ाई वाले नरक है ना, ये तो अंतिम स्टेज वाले हैं, इसके पहले भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जैसे किसी ने क्या किया 40 रुपया चोरी किया है फांसी, ऐसा तो नहीं होता ना। 40 रुपए की चोरी पर कोई फांसी नहीं देता, इट्स टू क्रूएल। कभी कभी तो कोई जेल ऐसे होते हैं जो केवल करेक्शनल है, केवल रहो यहां पर, कुछ गार्डनिंग करो, कारपेंटरी करो, कुछ तो काम करो, किचन में काम करो, बर्तन मांजो, वल्लाह अभी जाओ, अभी ये वार्निंग है। इसके बाद अगर आप पकड़े जाओगे तो पक्का जेल में भेजा जाएगा। ऑलवेज यूज दिस कॉमन सेंस। मनुष्य वो भी कलयुग का जीव, उसको अगर कुछ बुद्धि है कुछ मैनेजमेंट करने की तो सुप्रीम इंटेलिजेंस में क्यों नहीं होगा वो। और एक लास्ट कॉमेंट ये ऐसी है कि ये जो पांचवें स्कंद के एंड में 28वें अध्याय में ये वर्णन समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी एक हिंट ऐसे देते हैं कि कलयुग के बहुत सारे लोग हैं ना, ऑल आर फिट कैंडिडेट्स इसके लिए। ये जो भी नरक हम मैंने अभी बताया ना, इस सब के लिए मेनी आर रियली फिट कैंडिडेट्स। और हम सोच सकते हैं कि हम भले अज्ञान में करते होंगे, आई शुड एडमिट मेरी पहली धारणा ये थी कि मैंने एक वीडियो देखा था कि चीन में, अभी बोलू नहीं बोलू, लेकिन लाइव फिश, जिंदा मछली को उबलते हुए तेल में कुक करते हैं। एक तो कॉन्टेस्ट था ऐसे, हमारे डिवोटीज उसको कभी कभी कॉलेज में दिखाते हैं लोगों को। यू कैन इमेजिन हम कितना लोगों को कष्ट दे रहे हैं, बाकी जीवों को। 60 seconds बिफोर यू काउंट 60 सेकेंड के पहले वो आइटम तैयार होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े होटल के शेफ, रसोईया बनाने वाले, रसोई बनाने वाले कुक्स, तो एक इसमें उस मछली का ऊपर से उसने सब निकाला है, उसके स्केल उसको तेल से निकाला है, कुछ सॉस वॉस डाल के रेडी बना दिया है, उसके बाद भी उसकी उसका मुंह बंद हो रहा है, मतलब खुल रहा है बंद रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। इट इज अलाइव, नॉट फुली डेड। अब जो एक व्यक्ति ने ऐसे किसी जीव को इतना ट्रीटमेंट दिया है, तो अगर कृष्णा वॉर्न्स इन सम स्क्रिप्चर कि जो आपने उसको दिया है ना, आप अगर उसमें होते तो आज के इसमें मनुष्य के फाइन इंटेलिजेंस में वो फिट नहीं होता कि मुझे कोई ऐसा करेगा। तो ये डर होना आवश्यक है, हालांकि लोग डरते नहीं, वो बात अलग है। एक बार एक हमारे प्रचारक किसी को कह रहे थे कि नाम जप करो फिर हम नरक से बचोगे, तो बोले अच्छा आप नाम जप करते हो, बोला हाँ, तो आप कहां जाओगे, बोला हम तो स्वर्ग जाएंगे, तो जाओ ना फिर, अगर मैं नरक में जाऊंगा ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी जनता के सामने आप क्या प्रचार करोगे। फिर भी जैसे जो कंक्लूजन था, सुखदेव गोस्वामी ने इतना नरक का वर्णन किया और परीक्षित महाराज सोच रहे हैं बाप रे, ऐसी अवस्था से हु विल सेव देम, कौन बचा सकता है उनको। एक शब्द सुखदेव गोस्वामी यहां पर योजित करते हैं कि परीक्षित महाराज यू डोंट फियर, आप चिंता मत करना, आप तो भगवत धाम ही जाओगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस इज वैष्णव, मैं भगवत धाम जाऊंगा, सच्चिदानंद जीवन मुझे मिलेगा, मौज करने को, आराम करने को, आनंद लेने को, लेकिन ये इतने लोग सब क्यों इस नरक यातना के भागी होंगे। बोले महाराज इनके लिए कोई उपाय बताना ही चलेगा, कोई तो उपाय बताना ही चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज वैष्णव, ये सब देख रहे हैं वो, तो उन्होंने केवल जनरल नॉलेज के लिए प्रश्न नहीं पूछा कि महाराज नरक क्या क्या होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, वहां पे क्या होता है, ऐसे ऐसे मारा पीटा जाता है। हरे कृष्णा, मेरा दूसरा सवाल ये है ना, जब उन्होंने सुना कि ये नरक में ऐसी घोर यातना होती है, बोले कि कोई उपाय बताइए, और ऐसा उपाय जिससे पूर्ण रूप से आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो। उसके बाद वो अजामिल की कथा आती जिसमें नाम का महत्व बताया जाता है। तो चल रहे, नरक डराने के लिए है और डराने के लिए नहीं भी, क्योंकि कोई लोगों को वो इंफॉर्मेशन आवश्यक है जिससे वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके। सो स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की, दंतराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा गोपीनाथ की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, दाई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हाँ।